ओम शांति। आप सभी का भी बाबा के घर में स्वागत है, और खास योग तपस्या के लिए आप सब आए हैं तो ऐसे बाबा के योगी बच्चों का तो स्वागत ही स्वागत है। जब से बाबा के बने हैं हम सबको भी स्पष्ट है कि अब हम योग मार्ग के राही हैं। पहले हम भोग मार्ग के थे, पर बाबा के ज्ञान ने हमें योगी बना दिया है। हम योग मार्ग के राही, और हमारा जो योग है वो सिर्फ अभ्यास नहीं कि सुबह शाम योग कर लो और बाकी जैसे जीते हैं ऐसे जीते रहो। हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हमारा योगी जीवन है। राजयोग जीवन पद्धति है ना। हमने टोटल अपने जीवन को चेंज किया है, दिनचर्या भी बदली है, सच्चा योगी अमृत वेला अभ्यास जरूर करता है। गीता में जो कहा है कि जब भोगी जागते हैं तब योगी सो जाते हैं, और योगी जागते हैं तब भोगी सो जाते हैं। हम रात्रि के पहले प्रहर से सो जाते हैं और अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं। तो दिनचर्या हम सभी ने परिवर्तन की, और दिनचर्या बदली माना जीवन बदला, आहार विहार परिवर्तन किया। योगी के लिए कहा जाता है कि वो अति आहारी भी नहीं होता है, अनाहारी भी नहीं होता है। बहुत खाना नहीं, न खाना वो भी नहीं, मिताहारी, आवश्यक सात्विक पौष्टिक भोजन करते हैं। तो वो परिवर्तन भी हम सभी ने किया है। अन्न शुद्धि, हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। पहरवाइश भी हमारी चेंज हुई, मर्यादा पूर्ण वस्त्र स्वच्छ और श्वेत वस्त्र हम पहनते हैं। बल लौकिक रोल निभाने के लिए प्रसंग अनुसार रंगीन वस्त्र पहनते हैं, परंतु वो भी सात्विक मर्यादापूर्ण। हमारा संग भी बदला है। पहले हम किस कंपनी में घूमते थे और अब बाबा कंपेनियन और ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छी कंपनी है। तो प्रैक्टिकल योगी जीवन हम जी रहे, अब हमारा बुद्धि योग भटकता नहीं है। पहले तो किससे योग लगाना ये पता ही नहीं था। भक्ति में जो लोग योग करते हैं वो भगवान को पाने के लिए करते हैं। हमें भगवान मिल चुका है, हम भगवान पाने के लिए योग नहीं कर रहे, हमें भगवान मिल चुका है और स्वयं भगवान ने ही हमें योग सिखाया। हम योग करते हैं भगवान जैसे गुण और शक्तियों को धारण करने के लिए। हमारा योग बाबा से लग चुका है, हमें कोई मूंज नहीं है किसको याद करना है, इसको उसको सबको, ऐसा नहीं है। हमारा योग डायरेक्ट परमात्मा से है। हम रोज बाबा को याद करते हैं। हम सब चाहते हैं कि बाबा की याद में हम एकाग्र हों, निरंतर याद में रह सके, लगन में मगन हो जाए, क्योंकि एक रस निरंतर और एकाग्र याद से ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बन। रोज बाबा के ज्ञान को सुनते हैं और ज्ञान स्वरूप बनने का दिन भर अभ्यास करते हैं। समय परिस्थिति कैसी भी हो हम उसमें अचल अडोल रहे, है ना। जब सब कुछ अनुकूल है तब तो हर कोई शांति से प्रेम से रहते हैं चलते हैं, पर परिस्थितियां प्रतिकूल हो, विपरीत वातावरण हो, तो भी हम शांति से चल सकें, प्रेम से चल सकें, हमारा मूड ऑफ ना हो, हम एक रस रह सके, इसके लिए हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं। खास समय निकालकर और सभी बातों से फारिग होकर आप सब आए हैं, विशेष अपनी आत्म स्थिति को ऊंच और शक्तिशाली बनाने। हम जानते हैं कि और कोई जन्म में और कोई युग में हम अपनी स्थिति को ऊंच नहीं बना सकते, केवल संगम युग का ये कल्याणकारी समय है जब स्वयं भगवान आए हैं और हमें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसलिए और बातों को महत्व ना देकर हम ज्ञान और योग इनको महत्व देते हैं, क्योंकि और युग में ना बाबा आते हैं और ना और कोई हमें सत्य ज्ञान देता है। तो जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमें बेहद का योगी बनना है, तपस्वी बनना है, तो ऑटोमेटिक अन्य सभी बातों से हम न्यारे हो जाते हैं। बाबा तो कहते हैं संपूर्ण बनो, संपन्न बनो, पूरा वर्षा प्राप्त करो, संपूर्ण पावन बनो। बाबा तो हमें रोज मुरली में कहते हैं, हमारी दादियों ने, दीदियों ने, बड़ों ने हमें सदा उमंग उत्साह दिलाया है कि हमें बाप समान बनना है। पर जब तक खुद लक्ष्य नहीं बनाते हम बन नहीं सकते। जब तक खुद को ये तीव्र इच्छा नहीं कि मुझे शक्तिशाली योगी बनना है, भल बाबा कहें, दादियां कहें, ईश्वरीय परिवार हमें उमंग उत्साह दिलाएं, लेकिन जब तक खुद हमारा लक्ष्य नहीं हम बन नहीं सकते। इसलिए रोज बाबा के सामने जब बैठते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को पक्का करना है। बाबा के बारे में सुनते हैं ना कि बाबा सामने ही लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट रखते थे, आपने देखा भी होगा हिस्ट्री हॉल में। तो हम भी जब बाबा के सामने रोज आकर बैठते हैं क्लास में, योग में, तो हमें अंतर्मुखी बनकर अपने लक्ष्य को पक्का करना है, लक्ष्य को रिवाइज करना है। कि अभी हमें संगम युग में, संगम युग का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? भविष्य तो देवता है, पर संगम युग का अंतिम लक्ष्य हमारा है ब्रह्मा बाप समान बनना। सी फादर, फॉलो फादर, ताकि बाबा जैसा बन सके। ऐसा लक्ष्य है सभी का? किस किस का है? अपने आप से पूछ के हाथ करना है। हमारा हीरो कौन है? बाबा है। हमें उसको फॉलो करना। बाबा कहते हैं ना कि शिव बाप समान गुण और शक्तियों को धारण करना है, स्थिति शिव बाबा जैसी बनानी है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति के मास्टर सागर बनना है। और ब्रह्मा बाप समान प्रैक्टिकल कर्म व्यवहार करना है। जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। इस मास को हम तपस्या मास, स्मृति मास, समर्थि मास, अव्यक्ति मास के रूप में मनाते हैं और चारों ओर देश विदेश में तपस्या के कार्यक्रम चलते हैं। तो हमें एक प्रकार से सहयोग मिलता है, चारों ओर योग तपस्या चलती है और उस समय हम अगर योग करते हैं तो हमें सबके योगिक वाइब्रेशन की मदद मिलती है। तो तपस्या क्या करनी है? तपस्या क्या करनी? योग करना है, तपस्या करनी है, भट्टी करनी है, हम कहते हैं ना, तो हमें क्या करना है? तो मैं पांच बातें आपको बताऊंगी जिसको बाबा सदा अंडरलाइन करते हैं। पहली तपस्या कौन सी है? देहभान से न्यारे। आत्मभान में स्थित होना, ये पहली मूल फाउंडेशन की तपस्या है। क्योंकि देह अभिमान के कारण ही विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मा शरीर द्वारा संसार के संपर्क में आती है। हम शरीर द्वारा बाह्य संसार के संपर्क में आते हैं। जैसे ही हम अपने आत्म स्वरूप को भूलते हैं, खुद को देह समझते हैं, देहभान में आते हैं, कॉन्शियस बनते हैं, इस देह अभिमान के कारण ही दुनियावी आकर्षणों में हम आते हैं। भक्ति में ये प्रथम पाठ नहीं जानते हैं, इसलिए योगी बनने के लिए वे दुनिया को छोड़ दूर जंगल में चले जाते हैं कि संसार से दूर जंगल में शांत एकांत में जाकर बैठेंगे तो मन एकाग्र होगा। पर बाबा ने हमारी तपस्या को सहज बना दिया कि दुनिया से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, देहभान से न्यारा होने की आवश्यकता। इसलिए रोज बार बार ये महसूस करे कि मैं आत्मा, इस देह से अलग। शरीर रूपी गुफा में मस्तक के आसन पर मैं आत्मा योगी विराजमान। हम बार बार रियलाइज करें कि शरीर मिट्टी है, तत्व है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा एक शक्ति हूं। अभी ही 8-10 दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि बाबा ने पूरी मुरलियां आत्मा अभिमानी बनने पर चलाई, आत्मिक दृष्टि पर चलाई। मैं आत्मा सुनती हूं, मैं आत्मा बोलती हूं। हमें सुनने में ये बात कॉमन लगती है, हम समझते हैं कि बाबा रोज रोज वही बातें करते हैं, पर वास्तव में ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मूल और मुख्य पॉइंट है। इसलिए रोज अनेक बार बाबा अंडरलाइन कराते हैं। जब तक देह भान नहीं मिटाते, आत्म भान में हम स्थित नहीं होते, तब तक बाबा से योग लग नहीं सकता। तो हमें खुद इसको बार बार रिवाइज करना है, अर्थ समझना है और गहराई से महसूस करना है। तो पहली तपस्या है आत्मभिमानी बनना, और अगर सूक्ष्मता से हम अपने आप को चेक करेंगे तो अभी भी कई प्रकार से देहभान हम सबके जीवन में है। काले और गोरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, स्त्री पुरुष के संबंध में हमारा व्यवहार कैसा है, जाति ज्ञाति के बारे में हमारा व्यवहार कैसा है, ये खुद हमें अपने आप में चेक करना है। जब आत्मभिमानी हम होते हैं तो हम पक्षपात अन्याय कभी नहीं करें। तो प्रैक्टिकल अपनी रिजल्ट देखिए। आपने ये उदाहरण मीराबाई का सुना भी होगा कि जब वो वृंदावन जाती है और एक वैष्णव कृष्ण मंदिर में जाती है तो जो वो स्वामी था वो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते। यहां केवल पुरुष ही आ सकते। तो मीराबाई कहती है कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सभी गोपियां हैं। आप अभी भी अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकल आत्मभान सिर्फ आत्मस्मृति नहीं, एक है स्मृति पर आत्मस्थिति मीन्स आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं उन गुणों का स्वरूप हम होंगे। जब हम आत्मभान में हैं तो मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं, सही निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आत्मा समझकर आत्मा को चमाट मार रही। जो खुद को आत्मा समझेगा वो ऐसा कर्म करेगा ही नहीं। मैं बाबा की याद में ही टीवी देखती हूं। नहीं, जो बाबा को याद करेगा उनकी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो प्रैक्टिकल आत्मभिमानी स्थिति और खुद को बार बार डिटैच करना कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग। और बाबा ने यही अभ्यास किया था ना, मुरली में दिखता है ना, मुरली में बाबा का चिंतन है, ब्रह्मा बाबा का चिंतन है, वो दिखाता है ना कि बाबा ने इस पाठ को कितना पक्का किया। शुरू से लेकर यज्ञ के आदि में बाबा ने जब ये जीवन शुरू किया, बाबा ने पाठ पक्का किया था ना, नारायण भी आत्मा है। बाबा का बेटा नारायण नाम था ना, तो बाबा उसके संबंध में भी ये पक्का करते थे, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो दिन रात जिसके साथ हम जीते हैं, रहते हैं, कामकाज करते हैं, उनके साथ ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां हम कॉमन हो जाते हैं, कई बार लौकिक हो जाते हैं। पर जिनके साथ हम रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, भाइयों को हम आत्मा समझते हैं, बहने भाइयों को आत्मा समझते हैं, भाई बहनों को आत्मा समझते हैं, क्योंकि शरीर भिन्न भिन्न है, पर बहन बहन को भी आत्मा समझे, भाई भाइयों को भी आत्मा दृष्टि से दे। ये महसूसता बहुत जरूरी है कि मैं इससे अलग हूं, है ना। हमारी पहली भौतिकता यही है ना कि देह समझना, और जितना देहभान बढ़ता, इंद्रिय रसों में जाते, संबंधों के आकर्षण में जाते, इतना हम लौकिक, दैहिक और भौतिक बनते जाते। अगर यहां ही हम डिटैच हो जाएं, तो अपने आप हम सबसे न्यारे हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही खुद को अशरीरी हम समझते हैं, देहभान से मैं आत्मा अलग हूं ये समझते हैं, हम सभी बातों में साक्षी बन सके। अवस्था बदलती और बिगड़ती तब है ना जब व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव में हम आते हैं, पर आत्माभिमानी है तो साक्षी होके देख सके। तो हमारी स्थिति पर नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा, हम एक रस रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति है। जो हम दिन रात देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं ना, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा कर्म करती है, उसका प्रभाव पड़ता है, पर आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। आप पर नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। हमारी दूसरी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई, अव्यभिचारी याद। एक बाबा से सर्व संबंध, एक बाबा से सर्व प्राप्तियां। क्योंकि हम जानते हैं कि अविनाशी प्राप्ति, संपूर्ण प्राप्ति, सदाकाल की प्राप्ति एक बाबा से ही हो सकती। हम आत्माओं की स्थिति परिवर्तनशील है, इसलिए हम एक दो को अविनाशी प्राप्ति नहीं करा सकते। हम यथा बुद्धि एक दो को समझते हैं, यथा शक्ति मदद कर सकते हैं। बाबा एक्यूरेट हमें समझते हैं और संपूर्ण मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जिसके भी साथ संबंध है, जिससे भी हम संबंध जोड़ते हैं, उसके पीछे प्राप्ति का ही लक्ष्य होता है ना। इनका साथ मिले, इनका स्नेह मिले, इनसे समझ मिले, शक्ति मिले, सहयोग मिले, है ना। मनुष्य आत्मा संबंध क्यों बनाते? क्योंकि उनको कुछ चाहिए। और आत्मा वो पूर्ण प्राप्ति नहीं करा सकते। इसलिए अल्टीमेट जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो व्यक्ति किसको याद करती है? भगवान को याद करती है। अल्टीमेट परमात्मा को ही याद करते हैं कि अब आप ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। लोग दुखी हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, तब भगवान की शरण में जाते हैं। हम बाबा के बच्चों ने बाबा के सद्ज्ञान के आधार से ये सत्य समझ लिया कि अविनाशी सहारा, अविनाशी प्राप्ति एक बाबा से ही हो सकती है ना। आत्माओं से प्राप्ति तो आत्मा को बांधने वाली है ना। हम ऋणी बनते हैं ना। किसी से कोई भी हमें सहारा सहयोग मिलता है तो वो हिसाब बनता है, ऋण चढ़ता है, वो आत्मा को आत्मा से बांधता है। और अभी हमें तो मुक्त होना है ना, अभी आत्मा को हिसाब किताब से मुक्त होना है, वापस घर जाना है। इसलिए जितना हर बात में बाबा की याद रहेगी तो वो आत्मा को मुक्त करने वाली। तो ये जो बाबा रोज हमें समझाते हैं वो हमें बार बार याद करना है, तो हमारा बुद्धि योग आत्माओं में नहीं जाएगा और आत्माओं से हमें कोई अपेक्षा नहीं रही, है ना। अपेक्षा रहती है तो फिर अवस्था ऊपर नीचे होती है, कोई ठीक से रिटर्न ना करे तो हमारी अवस्था बिगड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा ही सर्वस्व है, बाबा ही मेरा संसार है, एक बल एक भरोसा, तो स्थिति डगमग नहीं हो। और इसलिए बाबा कहते हैं कि भल ग्रस्त में रहो, नौकरी धंधा करो, परिवार को संभालो, परंतु क्या बनकर, कमल फूल समान बनकर, कमल बनकर। तो लौकिक परिवार में भी कमल, अलौकिक परिवार में भी कमल। अल्टीमेट आत्मा को अपनी शक्ति से ही वापस जाना है, कहते हैं ना, इसलिए अकेले आए हैं अकेले जाना है। इसका मतलब ये है कि आत्मा को खुद खुद की गति का रास्ता बनाना है। हम सबका सौभाग्य है कि हम बाबा के साथ जाएंगे, अकेले आए परंतु बाबा के साथ जाएंगे। ताकि बाबा की याद रहे, बाबा के साथ जाने की खुशी रहे, है ना। अकेले जाना तो डर लगता है ना, भय लगता है, परंतु नहीं, हम बाबा की याद में जाएंगे। वही बाबा के साथ जाना है, मीन्स बाबा की याद में जाना है। तो चेक करना है कि मुझे कहीं भी बुद्धि फंसानी नहीं, बाबा ही साथी, बाबा ही जीवन सार थी। तो बाबा की याद में जब बैठते हैं कौन कौन याद आता है, चेक करो अपने आप को, क्योंकि जैसे ही हम शांत होकर बैठते हैं और सब बातें याद आती है। तो चेक करो कौन याद आते हैं और क्यों, अपने आप से पूछो कि क्यों। इस पर हमें याद, हम बाबा को करते हैं पर बाबा भी याद आता और भी बहुत कुछ याद आता। वो कहते हैं ना पांडव कौरवों की जब बाण विद्या की परीक्षा हुई तो बाकी सबने कहा मुझे तो आकाश भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है, उसमें बड़ा बिल्ला बैठा है वो भी दिख रहा है। सिर्फ एक अर्जुन ने कहा कि मुझे पक्षी की वो आंख दिख रही। तो हम ही वो पांडव है, बाबा हमें सिखा रहे हैं। हमें कौन याद आ रहा है, और खुद खुद से बात करके अपने आप को हमें बनाना है कि हर हाल में, हर चाल में, हर वेश में, हर देश में, हर परिस्थिति में बाबा याद आए। पहले बुद्धि में बाबा याद आए। तो सही सॉल्यूशन मिलेगा, सही मार्ग मिलेगा, सही समाधान मिले। हमारी तीसरी तपस्या है कि सदा ऊपर रहे, मूल वतन में रहे, मन की आंख से असली घर को देखे। व्यक्ति को जहां जाना होता है वहां उनका योग लगता है ना। आप सबको यहां आना था तो रोज योग किससे था? मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। अब हमें कहां जाना है? दो दिन के बाद फिर अहमदाबाद जाने का योग लगेगा। माना ये नेचुरल है कि जहां जाना है और जिसके साथ जाना है उनसे बुद्धि योग लग जाता है। तो बाबा के साथ जाना है और असली घर में जाना है, तो हमारा योग असली घर से। मन की आंख से घर को देखना, इन आंखों से दुनिया को देखते हैं, पर हम साथ साथ मन की आंख से असली घर को देखते हैं, क्योंकि वास्तव में अब हमें वापस घर जाना है। तो देखो मन की आंख से घर दिखाई देता है, तो बुद्धि ऊपर उठेगी। ज्ञान नहीं था तो इस दुनिया की बातों को ही देखते थे, सोचते थे, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं था ना। पर अब तो पता चला ना कि घर कौन सा है। तो ये भी इस दुनिया से बुद्धि योग निकले और बुद्धि ऊपर उठे घर को याद करने से। चौथी बात, सदा इस बात में दृढ़ रहना जो बाबा ने हमें सिखाया है कि इन कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना। इतना हमारा सेल्फ कंट्रोल, इतनी हमारी दृढ़ता हो, कुछ भी हो जाए कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना। योगी का गायन है ना, योगी जन उसको कहे शीतल जिसके अंग। हर कर्मेंद्रिय शीतल मीन्स विकार की अग्नि नहीं, चाहे देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, आने जाने में, माना कोई भी कर्मेंद्रिय अग्नि न रहे। जब हमारा लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनना है तो मुझे कर्मेंद्रिय से नया कोई पाप नहीं करना। आज 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से हम बाबा के बने हैं और सत्य ज्ञान हमें मिला है तो नए पाप नहीं होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे कॉमन और साधारण नहीं कि हो गया। योगी मीन्स कंट्रोल, उसको ही योगी कहते हैं ना, कि उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार होता है, कर्मेंद्रिय जीत होते हैं। ऐसे नहीं कि बात ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, उसने किया ऐसा, नहीं। मेरी अपनी भी तो एक स्थिति है, मेरा अपना भी तो लक्ष्य है कि मेरा मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो। तब कहेंगे कि आत्मा जागृत है, वरना जागृत कैसे कहे। बाबा तो कहते हैं ना कि किए विकर्म योग बल से भस्म करना है, नए विकर्म नहीं करना है, क्योंकि नए विकर्म तो उसका हिसाब तो बाबा कहते हैं 100 गुना हो जाएगा। इसलिए जब मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं और डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्मा हूं तो मेरा इतना कंट्रोल हो, संयम हो, स्व पर अधिकार हो कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ के प्रभाव में मुझे कोई पाप नहीं करने। तो ये भी एक तपस्या है, स्व पर कंट्रोल है, वो खुद ही उसके लिए दृढ़ता रखनी होती है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, मनसा कितना भी तूफान आए पर कर्मेंद्रिय से नहीं करना, क्योंकि कर्म हो गया मीन्स हिसाब बन गए, है ना। और हम जानते हैं ना कि वो चुकाना ही पड़ता है, फिर कोई और माफ नहीं कर सकता है। बाबा भी माफ नहीं कर सकते, ये कर्म सिद्धांत है। और पांचवी बात कि हम बाबा के साथ साथ प्रैक्टिकली यज्ञ से जुड़े हैं, प्रैक्टिकली हम बाबा के यज्ञ से जुड़े। सिर्फ मन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़े हैं नहीं, प्रैक्टिकली भी हम उनके इस विश्व कल्याणकारी कार्य से जुड़े। तो जितना यज्ञ महान है, जितना हमारा विद्यालय महान है, तो यज्ञ की आचार संहिता में बंधे रहना। तो जो हमारे यज्ञ की डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, मीन्स जो हमारे नियम मर्यादाएं दिनचर्या है, मुझे उस अनुसार चलना है। अब हम मनमत से नहीं चल सकते, मनमर्जी से नहीं चल सकते, क्योंकि हम सब ब्रह्मा कुमारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें जब लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले, ओम शांति वाले हैं, ये शिव बाबा वाले हैं। माना हमें व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, संस्था के रूप में देखते हैं। हम प्रैक्टिकल यज्ञ के रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमें यज्ञ के व्यवस्था अनुसार, नियम मर्यादा अनुसार चलना है। हमारे लिए पहले यज्ञ है, फिर अपना स्वार्थ। तो ये भी एक हमारी प्रतिज्ञा है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि हमें उस नियम मर्यादा में चलना, भल उसके लिए हमें झुकना पड़े, त्याग करना पड़े, पर हमें उसमें मजबूत रहना। तो उसके लिए भी प्रतिज्ञा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो हम सेवा के निमित्त बन सके, तो ये तपस्या है और उसमें हमें दृढ़ता करनी है। तो हरेक अपने आप को देखें कि ये पांचों ही बातों में हमारा क्या रिजल्ट है, और उसमें मुझे दृढ़ मजबूत कैसे बनना है। तो हम कुछ संकल्प अंडरलाइन करेंगे, अभ्यास करेंगे, सभी खड़े हो जाएं। शरीर को ठीक कर लीजिए, हाथ पांव कमर स्ट्रेच करके ठीक करिए, कब से आप बैठे हैं। माताएं जानती है ना कैसे करना है, हाँ करो करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा हाथ कमर खींचो। लाल लाइट करेंगे, पहला अभ्यास स्वयं स्वयं को पक्का कराएंगे। मैं योगी आत्मा, मैं वो ही शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। मैं आत्मा बाबा की संतान हूं। मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु हूं। अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। अपने मूल गुणों से मैं शांत आत्मा हूं। मैं शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूं। मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं। आनंद स्वरूप आत्मा, राइट साइड घूम जाए। मैं बाबा की, मैं सर्व संबंधों से एक बाबा की बन चुकी हूं। बाबा मेरा साथी है, जीवन सारथी है। बाबा की श्रीमत पर मुझे चलना है। जैसी बाबा चाहे ऐसा मुझे बनते जाना है। मेरे मन बुद्धि संस्कारों पर एक बाबा का ही अधिकार है। राइट साइड घूम जाए, प्रैक्टिकल जीवन में अब मैं ट्रस्टी हूं। बाबा मालिक है, मैं निमित्त ट्रस्टी हूं। सच्चाई सफाई से मुझे कर्म करने हैं। जो बाबा को पसंद हो वो ही मुझे कर। अन्य सभी आत्माओं का पार्ट ड्रामा के दृश्य साक्षी होकर देखना है। शुभ भावना का सहयोग देना है। राइट साइड घूम जाए, बाबा से साथीपन, अन्य सर्व से साक्षी। राइट साइड घूम जाए, शेष जीवन में मुझे मास्टर दाता बनना है। जो अलौकिक प्राप्तियां बाबा से की है सर्व खजाने बाबा ने दिए हैं, और आत्माओं को बांटना है। मुझे अपने संकल्पों से, अपने अस्तित्व से, वाइब्रेशन से, मन के सूक्ष्म भाव और भावनाओं से, वाणी और कर्म से मुझे देना है। बाबा से अपने आप को भरना है और सबको बांटना है। ओम शांति।